Good evening and welcome to the Sunday edition of the Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners. But unlike the usual Sundays, we won't take calls on mutual funds today. Instead, you can call us for any query that you may have on business, economic and stock market matters. The numbers to call us on are 2331-4444, 2342-1050, and 2331-0464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, हर्ष रंजन.
नमस्कार. हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ. इस कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं, देश विदेश की आर्थिक खबरों पर हम चर्चा करते हैं, नजर डालते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों पर, बात करते हैं बीएसई और एनएसई की भी. और आज का दिन रविवार है. आमतौर पर हम म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करते थे, लेकिन आज हम जनरल चर्चा करेंगे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में. आपके अगर कोई सवाल हो आप जरूर फोन करके हमसे पूछें. दो टेलीफोन लाइन्स आपके लिए खुले हुए हैं. नंबर्स हैं 2331-4444 और 2342-1050, दोनों नंबर दिल्ली के. 011 एसटीडी कोड के साथ आप डायल कर सकते हैं. आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट एके भट्टाचार्य. एके बी, आपका बहुत बहुत स्वागत.
नमस्कार.
वार्म वेलकम एके.
थैंक यू.
शुरू करते हैं मार्केट मंत्र हेडलाइंस इंग्लिश में.
फॉरेन इन्वेस्टर्स पंप इन ओवर 41,000 करोड़ रूपीज इन टू द इंडियन कैपिटल मार्केट्स इन जून. World Bank approves $1.5 billion financing for promotion of low-carbon efforts in India. And global crude oil prices jump over 6% this month. Experts predict Brent to remain around $90 a barrel in the near future.
जून महीने में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में 41,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया. विश्व बैंक ने निम्न कार्बन ऊर्जा विकास कार्यक्रम में भारत की आर्थिक सहायता के लिए दूसरे चरण की $1.5 अरब की सहायता राशि जारी की. और जून महीने में कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 6% से अधिक का उछाल. ब्रेंट $86.41 पर पहुंचा. $90 के आसपास रहने की उम्मीद विशेषज्ञों ने जताई. जून महीना भारतीय शेयर बाजारों के लिए काफी अच्छा रहा है, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में 41,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है. एफपीआई ने 26,565 करोड़ रुपए इक्विटी बाजार में निवेश किए, जबकि लगभग 15,000 करोड़ रुपए ऋण बाजार में लगाए. इससे पहले मई महीने में विदेशी निवेशकों ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा वापस निकाल लिए थे. अप्रैल में भी विदेशी निवेशकों ने 8,700 करोड़ रुपए वापस खींचे थे. हालांकि मार्च का महीना विदेशी निवेश के हिसाब से बेहतर रहा था, क्योंकि निवेशकों ने 35,000 करोड़ रुपए निवेश किए थे. साथ ही फरवरी में भी 1,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ था. जनवरी में आउटफ्लो 25,500 करोड़ रुपए से अधिक का रहा. इस प्रकार इस साल अब तक ऋण बाजार में कुल विदेशी संस्थागत निवेश 68,624 करोड़ रुपए का हो चुका है. योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनको ले लेते हैं. हमारे आज के कॉलर हैं, इसके बाद हम चर्चा करेंगे एफपीआई पे अपने एक्सपर्ट के साथ. लेकिन पहले योगेश, आपका स्वागत. क्या सवाल है आपका?
जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप सभी को नमस्कार. सर मेरा सवाल अमित जी से ये है कि ये नई टैक्स रिजीम जो है, क्या ये कंजम्पशन ओरिएंटेड ना मानी जाए, क्योंकि इसमें कुछ छूट वगैरह नहीं है. और क्योंकि पहले वाली इसमें तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, बट इसमें कुछ ऐसा है नहीं. दूसरा एक सवाल है मेरा, थोड़ा सा ये डिफरेंट सवाल है, बट क्योंकि कॉरपोरेट कर्मचारी को जब अप्रेजल का टाइम आता है, इंक्रीमेंट का टाइम आता है, तो कितना परसेंट उसको आइडियली होना चाहिए, वो कैसे वो जस्टिफाई कर सकता है नेगोशिएशन के टाइम पे?
जो कॉरपोरेट की जो सवाल आपने उठाया है, उसमें दो मुद्दे आते हैं. पहला मुद्दा जो है वो जनरली इंडस्ट्री वाइड एक ट्रेंड होता है, हर साल में वो ट्रेंड बदलता रहता है। जैसे सर्विसेज सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, स्पेशल इंडस्ट्री में, जैसे कोई इंजीनियरिंग सेक्टर हुआ या पावर सेक्टर हुआ या बैंकिंग सेक्टर हुआ, उन सेक्टरों में एक ओवरऑल एक ट्रेंड होता है कि कितना परसेंट ओवरऑल इंडस्ट्री इंक्रीमेंट होनी चाहिए। एक तो पहली बात वो है, वो ओवरऑल ट्रेंड होती है। मान लीजिए किस साल 9% होगी, किस साल वो 10% होगी, किस साल वो कभी कभी 15% भी हो सकती है। और इसके साथ जुड़ा रहता है इन्फ्लेशन रेट, कि कितना इन्फ्लेशन रेट उस साल में रहा है पिछले साल में, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ये जो आपका जो इंक्रीमेंट रेट है उसके अंदर इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ होता है। और दूसरी बात जो जो मुद्दा जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये है कि आपकी जो कंपनी जो है वो कंपनी कैसी परफॉर्मेंस दे रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उसकी अर्निंग्स कितनी है, और उसके हिसाब से वो जो इंक्रीमेंट जो है वो आप बात कर सकते हैं या कंपनी तय करती है। तो दोनों चीज, इंडस्ट्री ट्रेंड और कंपनी की परफॉर्मेंस, दोनों चीज ये डिटरमाइन करती है कि एक एम्प्लॉई की फाइनल इंक्रीमेंट कितना होगा। इसमें नेगोशिएशंस का स्कोप इतना ज्यादा नहीं रहता है मेरे हिसाब से।
बट व्हाट अबाउट दी एम्प्लॉईज परफॉर्मेंस?
ऑफ कोर्स देर इज दैट इज द थर्ड एलिमेंट विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट देर इज एन इंडस्ट्री ट्रेंड, देर इज कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, एंड देन देर इज एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। There is an issue there which you rightly pointed out, that many companies have introduced a variable component in your package. The increment is also split under, one is the variable component which is linked to the company's performance, and other is the performance link, that your performance. And what I said about the industry trend is a broad marker.
जी, और इनका पहला भी सवाल था कि भी वो ये था कि जो न्यू टैक्स रिजीम है क्या वो स्पेंड ओरिएंटेड है, कि चाहती है सरकार कि आप स्पेंड करें क्योंकि उसमें कुछ बचत करने का
जरूर, उसमें कंजम्पशन का एक जरूर एक ट्रिगर है उसमें नई न्यू टैक्स रिजीम में, क्योंकि हालांकि वो ओल्ड रिजीम में आपका टैक्स रेट किक इन करता है 2.5 लाख की इनकम में, पर न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख में आती है। उनके जो टैक्स रेट्स जो हैं वो टैक्स रेट्स कम हैं डिफरेंट स्लैब्स में, पर एग्जेंशंस बहुत सारे नहीं हैं। डिबेट ये ही चल रहा है अभी कि वो जो बाकी जो एग्जेंशन जो हैं वो कब तक रखनी चाहिए या कैसे उनको फेज आउट किया जाएगा। पर इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो नया टैक्स रेजिम जो है वो कंजम्पशन को बूस्ट के लिए है, वो किस तरह से आपके पास जो डिस्पोजेबल सरप्लस जो है एक एम्प्लॉई को, एक इनकम टैक्स पेयर को, वो अगर डिस्पोजेबल सरप्लस अगर ज्यादा होता है वो किस तरह से वो जाकर वो एक दो चीज होती हैं, एक तो वो सेव कर सकता है, बैंक में डिपॉजिट डाले फिक्स्ड डिपॉजिट, दूसरी बात है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, और तीसरी बात ये कि वो मार्केट में जाकर खर्चा करे। ये तीनों चीज इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देती है।
Joining us from Mathura is Tarun. A warm welcome, Tarun.
Sir, मैं मथुरा से तरुण बंसल बोल रहा हूँ।
जी, सवाल पूछिए।
तो मेरी एक सलाह है कि जैसे आपका कई बार संडे को म्यूचुअल फंड का प्रोग्राम स्किप हो जाता है, मतलब नहीं आप कर पाते, तो उसे मंडे को कर दिया करें, जैसे आप मंडे को ये प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये था मेरा सर कि ये एनपीएस में क्या चेंजेस आए हैं? अभी सुनने में आया है कि कुछ एक चेंजेस आए हैं एनपीएस में, और कोई अच्छा इक्विटी फंड बता सके जिनमें इन्वेस्ट कर सकूं मैं म्यूचुअल फंड में, अगर बता सके तो।
ऑन द क्वेश्चन ऑफ द एनपीएस, देर हैज नॉट बीन एनी चेंज सो फार। द न्यू पेंशन स्कीम रिमेन्स एज इट इज। देर इज अ कमिटी, ऑफिशियल कमिटी इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री व्हिच इज लुकिंग इनटू इट। इट इज अंडरस्टूड टू हैव मेड सर्टेन रिकमेंडेशंस। It is likely that the budget that will be presented in the third week of July will incorporate some of those recommendations and make part of the new pension scheme. But as of now, there has been no change in the NPS. As a matter of fact, the demand for changes and going back to the old pension scheme has actually come down a bit, and the distortions in the old pension scheme are being going to be addressed in the new pension scheme. The key challenge on the NPS scheme is that what should be the assured portion of an employee's, government employee's or any employee's pension amount? Should it be 50% or should it be less? Now, if it has to be 50%, then the government will have to step in and provide some additional money from the exchequer. Now, that is a question that will be determined and decided by the government in the next few months.
It can be, in the market today, the undercurrent is positive, with no major risk visible for the domestic market in the short term to begin with. So all eyes, as you very rightly mentioned a while back, will be on the union budget proposals, which will dictate the market in its medium term. What's your take on that?
Well, yes, the budget is keenly followed and keenly watched. Event in the calendar of any government, and as you would know that this is going to be the full budget for the current financial year. The interim budget had been presented on February 1 earlier this year. Now the key issue before it is twofold. The number one is what should be the fiscal consolidation path for the government. Now, remember, this is not as macroeconomic an issue as it is made out to be. Now, if the fiscal consolidation program is expedited or the targets are advanced, then it has got a huge bearing on the private corporate sector, because the moment that the fiscal deficit comes down faster than what it has been originally been proposed, like the interim budget had talked about 5.1% of GDP should be the fiscal deficit for the current financial year, and the target is to reduce it to 4.5% of GDP in 2025-26. Now, imagine a situation that instead of 5.1%, if it comes down to 5% or 4.9% in the current year given in the budget. Mm-hmm. Now, immediately, that much money, and that's a huge amount of money,
available
for the private corporate sector in the bond market. Mm-hmm. Now, they can use that money, instead of that money being mopped up by the government system, they will be available in the corporate sector. So therefore, overall, the cost of money is likely to come down. So the fiscal consolidation path is a very, very important indicator in the budget that will come. And it is not just for the government's health or the economy's health, but also of the corporate sector's ability to spend more money at a lower cost, because the interest rate will be lower. The second big issue would be that how much money the government needs to spend on creating further infrastructure. Remember, the government has been spending a lot of money on what is called the CAPEX, the capital expenditure, essentially to create new infrastructure. A lot of money in the last 3 years, post-COVID particularly, from around 3 years ago, it was around 4 lakh crore, then it went up to 7 lakh crore, and last year it was 7.5 or 9, and the current year proposed is 11 lakh crore. Now, how should the government distribute that money across different sectors, and to what extent the states can be encouraged to take a bigger, play a bigger role in implementing the money. Please remember, the center may be spending that money, but if the states can multiply that effort, the overall multiplier effect on economy will be huge. So these are the two major things, and of course you have the issue about whether there will be some tax rate tweaks, some tax reforms, whether the import tariff will be calibrated further, lower down or not. So these are the other issues that will come up in the budget, which is why budget is the keenly awaited document.
So if you have any query related to economy, business and stock market, then you can call us at 2331-4444, 2342-1050. We have senior economic journalist A.K. Bhattacharya with us, एंड वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल्स।
एक भी जैसा हमने पहले एफपीआईज के बारे में बताया था, जून महीना तो काफी बेहतर रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें, चाहे वो डीआईआईज हों या एफआईआईज हों, अगर इस साल अब तक देखें मार्केट में जो कैपिटलाइजेशन है 1 ट्रिलियन से ज्यादा अब तक बढ़ा है, जो कि एक ह्यूज फिगर है। साथ में जून महीने में भी हमने देखा कि 6% के आसपास मार्केट की ग्रोथ हुई है। क्या मार्केट अब यहां पे बजट के बाद आप देखते हैं कि एक कंसोलिडेट कर रहा है या और लगातार अभी आगे बढ़ता रहेगा?
देखिए, जो इस वक्त जो हो रहा है जून में, आपने जो जिक्र किया, ये मैं समझता हूं कि ये एक कंबाइंड रैली है। ये जो रैली, एक कारण तो है कि मार्केट का जो एक एक्सपेक्टेशन था गवर्नमेंट फॉर्मेशन से,
स्टेबिलिटी
वो फुलफिल हुआ है। उसी के लिए थोड़ा बहुत रैली हमें चल रहा है कि स्टेबल गवर्नमेंट, कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम गवर्नमेंट इन द सेम पॉलिसीज, फर्दर कन्फर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट्स एड्रेस इन विच शी टॉक्ड अबाउट हाउ द पॉलिसीज विल बी कंटिन्यूड, हिस्टोरिक स्टेप्स विल बी टेकन इन द बजट, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विल बी फॉलोड। सो ये सारे फैक्टर्स काम कर रही हैं इस रैली के पीछे। और दूसरा जो है वो है कि एक बजट आ रहा है, वो एक प्री बजट रैली भी हम कह सकते हैं। और तीसरा जो तो कॉरपोरेट सेक्टर का जो हेल्थ जो है, इट इज नॉट जस्ट क्वेश्चन ऑफ बैंक्स की। जो आप रिसेंटली जो एफएसआर से रिपोर्ट जो आई है उसमें आप देखेंगे कि रिकॉर्ड लेवल जो एनपीए आकर 1.5 के नीचे आ गई है,
काफी कम
हो गई है, रिकॉर्ड लेवल। सो सारी अगर बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे या जो टॉप कंपनीज की जो अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो अभी भी काफी हेल्दी रेट में बढ़ रही है, हालांकि प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा स्क्वीज है, पर ऑल दीज फैक्टर्स जो आपने कहा कि मार्केट को बढ़ने में और एक रैली मेंटेन करने में सहायक हुई है।
बिल्कुल, कॉलर ले लेते हैं, फिर थोड़ी सी बात करेंगे इंटरनेशनल यूएस मार्केट की कि वहां भी चुनाव के पहले क्या होने वाला है। विजय थाने से हमारे पास, विजय आपका स्वागत मार्केट मंत्रा में, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? टेलीफोन लाइन्स के साथ अभी कुछ समस्या है, अभी वो जुड़ नहीं पाए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अभी यूएस में भी इलेक्शन हो रहा है और दुनिया का चाहे कोई भी मार्केट हो वो यूएस मार्केट से जरूर अफेक्टेड होता है। वहां रेट कट्स को लेकर क्या आपको लग रहा है, क्या हो सकता है और मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा?
मुझे ये लग रहा है कि जो इलेक्शन जो है, यूएस के इलेक्शन जो नवम्बर में जो होने वाले हैं, उस इलेक्शन में ये तय होगा कि जो यूएस की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं और यूएस की जो चाइना स्टैंड जो है उसमें कैसा परिवर्तन आएगा, ये एक मुद्दा जरूर स्टॉक मार्केट को ग्लोबली ये इम्पैक्ट करेगा। और दूसरी बात जो है, जो इंटरेस्ट रेट कट की बात, उसमें जो जेरेमी पावेल साहब का जो साफ साफ कहना ये है कि जब तक ना इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल ना आ जाए तब तक इंटरेस्ट रेट हमको कट करने की हम स्कोप को नहीं देख सकते।
ही सीम्स टू बी क्वाइट फर्म ऑन,
वेरी फर्म ऑन इट, एब्सोल्युटली, एंड ही इज यू नो हायर फॉर लॉन्गर, दैट्स द पॉलिसी ही हैज बीन मेंटेनिंग, एंड दिस इज यू नो इन ए वेरी 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 पिक्यूलियर वे यू विल सी अ सिमिलर स्ट्रेन that is coming from India's Reserve Bank of India governor also.
Right.
He is also following the same line. He is saying that inflation is a beast that is not yet come under fully control. So I think for the maintenance of stability in the market, these are very positive signs. Although the stock market players, and they might feel a little disturbed or worried that if the interest rates come down faster, then it might release greater energies in the capital market. But from a stability point of view, the post financial crisis, global financial crisis 2007-8, the kind of extra money that was released. Now, this inflation bout is an overall outcome of all the excesses that were committed in the last 20 years or so.
So, EKB, the U.S. stocks on Friday, yesterday, ended weaker after an early rally fizzled as investors digested the in-line inflation data. And also, and I would like your comment on this particular aspect, weighed the political uncertainty after the U.S. presidential debate. So,
well, you know, I mean, there is a big, you know, political dilemma that the American voters are going to face, which is a better option? What kind of option do they have? And if you look at the European Union elections, recently European Union had its own elections, and you saw how the right wing parties have gained in every possible way. Now whether it is the National Rally Party of France or whether it is the Brother Party in Italy, and there's one more party in Germany, they are all gaining strength in the European Parliament. Now, this is a clear pointer to the way the world is moving. So, I would not be surprised if even in the US elections, you see a more rightward movement, and I don't want to take names here, but rightward movement would mean Trump.
Yeah.
Now, if that happens, then you not only see U.S. Economic policies becoming little more inward-looking. China needs to worry because China's continued growth depends a lot on what is going to happen in the U.S. Biden was trying to make peace with Xi, but I don't know what stance if Trump were to come back would take. So therefore, with the way the political the weather is turning out globally, I would say the economic outlook becomes more challenging. And I should be pointing out here that even the economic outlook for a country like India, a large country like India, will also be more challenging, and it must take note of that. So therefore, the budget will be...
Bound to have repercussions
on the Indian economy. And even if, you know, the crude oil prices, they may go up, as you were talking about, that crude oil prices may go up a little more. Yes. So therefore, there's a global geostrategic tension that are nowhere are going to coming down. You have got Ukraine and Russia and Gaza and Palestine. The Israel problems are going on.
Yeah. Ravi is the next caller. क्या सवाल है रवि आपका पूछ सकते हैं आप?
हाँ नमस्कार मार्टिन और एक्सपर्ट को भी टीवी सर को
नमस्कार
सर ये जानना है कि अभी जैसे कि जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि अभी हीट को देखा हमने काफी बड़ी हुई थी गर्मी के सीजन में तो इसको देखते हुए ग्रीन एनर्जी सेक्टर जो है वो उसमें कुछ भूमिका निभा सकता है एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बैलेंस को दोनों तालमेल रखते हुए
इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बजट की बात कर रहे थे और इसमें कोई दो राय नहीं है और मुझे लगता है कि इस बजट में ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया जाएगा हर सेक्टर में फिस्कल पॉलिसीज को भी काफी फाइन ट्यून करके किस तरह से ग्रीन इकोनॉमी को इनकरेज किया जाए ये हम देखेंगे शायद एंड इकोनॉमी की सस्टेनेबल ग्रोथ इस वक्त शायद हमारी जो डिपेंडेंस कोल के ऊपर है वो इमीडिएटली तो विड्रॉ रिड्यूस हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें ग्रोथ सफर करेगा पर एक साथ अगर मुझे लग रहा है कि जो ग्रीन इकोनॉमी ग्रीन एनर्जी को भी फोकस देके ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस देके और फिस्कल एनकरेजमेंट इंसेंटिव देकर उसको भी अगर हम ग्रोथ के अंदर एक ग्रोथ इंजन बना सकें तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ
वी डू हैव अ स्टोरी रिलेटेड टू दैट द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ सेकंड राउंड ऑफ $1.5 billion in financing to help India accelerate the development of low-carbon energy. The financing is extended to promote a market for green hydrogen, electrolyzers, and increase renewable energy penetration. Earlier in June 2023, the World Bank approved the $1.5 billion for the first low-carbon energy pragmatic development policy operation. The fresh funding is expected to help India expand its green hydrogen production and boost the mobilization of finance for low-carbon investments. The development comes in the backdrop of India's ambitious national green hydrogen mission and energy transition targets. The centre has set a target of achieving 500 gigawatt of installed renewable energy capacity by 2030 and reaching net zero by 2070. So, your comment?
Absolutely. I mean, you know, the target, we it will take a lot of effort on our part to reach this 500 gigawatt target, because while I must say that the progress that we have made in the last couple of years has been quite good, except that our renewable power segment, it requires some more policy support so that the utilization of those facilities that have been created is better and more optimal.
Satish from Delhi is with us. A warm welcome. Satish, please ask your question.
My question is that you have just mentioned 11 lakh crore rupees of the capital expenditure. Where it goes actually, capital expenditure, and whether it is improving the conditions of the farmers, because now after population increase, lot of land holding is come to smaller. How you can improve the farmers' earning? Thank you.
There are two issues that you have raised, very, very valid issues. One is the capital expenditure. The capital expenditure is largely used in creating infrastructure capacity in the country. And as you know, that India is right now facing an infrastructure deficit. A good chunk of that infrastructure money goes to the Indian Railways. Another chunk goes into road and highway sector. So these, most of the bulk of the capital expenditure is used for creating capacity in the much needed infrastructure sector. Now that's one, and I think that stress, that drive should continue unchecked. The other point that you mentioned is also equally important, and it has got a huge electoral implication also, which is the farmers' health. Now, farmers have, over the last few years, have seen a very marginal increase in their income, while the Indian economy has grown rapidly, but the farmers' GVA increase, if you see, have not been more than 3-3.5%. Now, therefore, there will be need to provide not only schemes by which the farmers' ability to generate more income for them is possible. There is one policy shift that probably will help, which is that the farming sector is looked at by policymakers only from the consumer's point of view, and it is not looked at from the farmer's point of view. And the second point is there is an urgent need to increase the kind of income transfer, the income support scheme that we have seen through the PM Kisan scheme, with the amount was announced in 2019 at 6,000 rupees per year per family. This obviously, taking into account the inflation, it needs to go up.
Moving on, the global crude oil prices jumped around 6% in June. The Brent crude oil futures ended the week at $86.41 a barrel, while the U.S. crude finished at $81.54 on Friday. For the week, Brent closed almost unchanged, while the U.S. crude was down just 0.2%. Experts predict the Brent crude to remain around $90 a barrel over the coming months. They also feel that the prices might not change much in the second half of 2024.
Rajesh, aaj ke liye itna hi, samay khatm ho raha hai. AKB, aap studio aaye, baatcheet ki, aapko bahut bahut shukriya.
Dhanyawad.
Aur tamam shrotaon ka bhi shukriya jinhone hame phone kiya aur hame suna.
Thank you, AKB, for being with us. And before we close the headlines once again, foreign investors pump in over 41,000 crore rupees into the Indian capital markets in June. World Bank approves $1.5 billion financing for promotion of low carbon efforts in India, and global crude oil prices jump over 6% this month. Experts predict Brent to remain around $90 a barrel in the near future. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Namaskar. Market Mantra.